ओम शांति। प्रश्नों से पार, ये सीरीज हमने चालू की थी और बहुत दिनों से, कुछ मास से इसको नहीं कर पाए क्योंकि बीच में बहुत सारी बातें आ गई, नई नई सीरीज, तो बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं। तो आज ऐसे चार प्रश्नों के हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81, किसी ने पूछा है, मुझे मेरे परिवार की दो आत्माएं हमेशा विघ्न डालती रहती है, मैं उनसे बात भी नहीं करना चाहती, मैं उनके सामने साइलेंस में रहती हूं लेकिन वे मेरे से दुर्व्यवहार करते हैं, कृपया इसका समाधान बताइए। प्रश्न है, परिवार की दो आत्माएं क्या करती है, विघ्न डालती है, और मैं उनसे बात नहीं करना चाहती और मैं उनके सामने चुप रहती हूं परंतु वो मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो अब क्या किया जाए। अमृत वेला उनसे बातें करो, अमृत वेला उनको सकाश दो, और क्या करो। सबसे पहले तो ये ना समझे कि वो विघ्न डाल रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, उनकी जो बुद्धि है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो संस्कार है, उसके प्रभाव में कर रहे हैं। दूसरा, आत्माएं जैसा भी बोल रही है और जो भी कर रही है और हमारे साथ उनका जिस तरह का व्यवहार है, वो जन जन का हिसाब है, वो हमारा ही जन जन का कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। तीसरा, आत्माएं जो भी कर रही है और जिस तरह भी विघ्न डाल रही है, उन विघ्नों में सूक्ष्म कल्याण छिपा हुआ है, उन विघ्नों में हमारा विकास, हमारी ग्रोथ कहीं ना कहीं छिपी हुई है, क्योंकि वो यदि विघ्न न डाले तो हमारी ग्रोथ कैसी होगी। एक जेन मास्टर था और वो गुरु के बहुत सारे शिष्य थे, पर एक शिष्य ऐसा था जो उसकी सूक्ष्म में और उसके पीछे हमेशा ही निंदा करता था, कुछ ना कुछ उसको कहते ही रहता था अपने दूसरे शिष्यों के सामने। वैसे तो शिष्य गुरु की निंदा न करे, परंतु आदत, और वो हमेशा ही निंदा करते रहता था और वो निंदा उस गुरु के पास कहीं ना कहीं से पहुंच जाती थी। उसे कोई ना कोई आके बताता था कि आपके बारे में उसने आज ये कहा, आपने आज ये भाषण दिया, आपने ये सिखाया, ये प्रवचन दिया, पर उस प्रवचन में ये गलती थी, उसने बाद में बताया, और वो फैला रहा है कि ये जो पॉइंट थी एकदम ही प्रैक्टिकल नहीं थी, ये जो बात बताई गई है ये कहीं से चोरी की हुई थी, ये जो बात बताई गई थी ये इनका अनुभव नहीं था, खाली थियरी थी, ये जो बात थी इनका, इनको खुद भी कुछ अनुभव नहीं था, ये ऐसे ही सिखा रहे थे। तो वो एक ऐसा शिष्य था जो अपने गुरु की बहुत छुप छुप के युक्तियुक्त, बड़ी ही राजयुक्त तरीके से, ताकि गुरु को पता ना चले, इस तरीके से उसकी निंदा करता था, और उसको बड़ा रस आता था, क्योंकि कोई अगर कोई अच्छा सिखाए और हम कहे क्या सिखाया उसने, कुछ नहीं सिखाया, इसका मतलब हो जाता है तुम उससे थोड़ा ज्यादा जानते हो, ऐसा हम दूसरों को बता सकते हैं कि उसने जो अच्छा बताया और जो सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा क्लास, बहुत अच्छी क्लास थी और ये प्रवचन बहुत अच्छा था, और हम कहे क्या अच्छा था, कुछ भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल फालतू था, तो इससे लोग कहते अच्छा, मतलब हम उससे भी ऊपर है, ऐसा एक इंप्रेशन हम इनडायरेक्टली क्रिएट करते हैं परोक्ष रूप से। तो वो शिष्य हमेशा ही गुरु की निंदा करता था, और वो निंदा जो उसने की वो गुरु तक दूसरे जो गुरु के शुभचिंतक शिष्य थे, वो चूकते नहीं थे ये बात गुरु तक पहुंचाने से, क्योंकि उन्हें भी खुशी होती थी कि आपने ऐसा कहा ना तो उसने वैसा कहा, इसमें भी सूक्ष्म सुख है और आनंद है यदि हमें अ के बारे में ब ने कुछ बता दिया तो हम अ को जाके बताएंगे कि देखा तुम्हारे बारे में, ये नहीं कहेंगे ब ने कहा, हम कहेंगे लोग ऐसा कहते हैं, हमने सुना है तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं लोग, कहा होगा एक ही ने, पर हम कहेंगे पांच, कई लोग ऐसा बोल रहे हैं, ऐसी हवा चल रही है तुम्हारे बारे में। और उसको हम थोड़ा और ज्यादा, उसने हमको थोड़ी बात बताई, पर एज पर द प्रिंसिपल ऑफ चाइनीज विस्पर्स, बैठ जाइए नीचे, चाइनीज विस्पर्स का जो प्रिंसिपल है, सामने सामने आ जाइए, वो क्या कहता है, जो बात हमने इतनी सुनी हम उसको थोड़ा मिर्च मसाला लगा के और अच्छे से उसको छोक लगा के फिर जब प्रेजेंट करते और परोसते हैं तो लोगों को लगता है कितना ये ज्ञानी है, कितना अपडेटेड है और कितना उसको ज्यादा पता है। और फिर हम वो बात उस व्यक्ति को बताते हैं कि देखो तुमने ऐसा किया है और तुम्हारे बारे में लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तो ये कहने में भी सुख है, एक अज्ञात सुख अंदर ही अंदर, कि जिसकी निंदा हुई है या जिसने गलती की है उसको जाकर उसकी ही गलती सुनाना, बताना तुमने ऐसा ऐसा किया है। तो वो शिष्य एक बार बीमार पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है और शमशान घाट पर उसको लेके जाया जाता है, तो वो गुरु बहुत ही दुखी होते हैं। तो बाकी शिष्य आके कहते हैं तुम्हें तो खुश होना चाहिए आपको, तो क्योंकि ये शिष्य आपकी हमेशा निंदा करता था, वो कहता था वही तो एकमात्र शिष्य था जिससे मैं सीखता था, क्योंकि मैं कुछ बोलता था और उसके बाद तुरंत उसके एक्सपर्ट कमेंट्स उसी से मुझे सुनने मिलते थे, क्रिटिकल रिमार्क्स, ऐसा क्रिटिक ऐसा आलोचक कहां मिलेगा, तुम सब तो मेरे फॉलो करने वाले हो, कल की मुरली में था ना सत 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 वचन, ये सब क्या है भक्ति, तुमसे मैं क्या सीखूंगा, सीख मेरा गुरु तो वो था जो चला गया, इसलिए मैं दुखी हूं। तो यहां पर विघ्न डालने वाले इसलिए विघ्न डाल रहे हैं ताकि हम सीखें, विघ्न डालने वाले इसलिए विघ्न डाल रहे हैं ताकि उनको चिंता इतनी ज्यादा है हमारी, हमें संपूर्ण बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, नाटक कर रहे हैं एक है? हमें एक्टिव करने के लिए, और जैसे बताया है कि रामायण में सबसे श्रेष्ठ पात्र कौन सा है, मंथरा, कितना बड़ा कलंक अपने सिर पर ले लिया क्योंकि चाहती थी कि राम किस लिए आया है, वो जो वन में निशाचर है, वो जो राक्षस है, वो जो रावण है उधर हड़कंप मचा रहा है, उसका नाश करने के लिए, राम अगर इधर ही रह जाए तो फिर सृष्टि का कल्याण कैसे होगा, राम को वन में भेजना बहुत जरूरी था, इसके लिए सारा ब्लेम क्या कर दिया मंथरा ने, अपने सिर पर ले लिया और योजना बनाई कि कैसे राम को भेजे ताकि विश्व का कल्याण हो। तो ऐसे ही समझना, विघ्न डालने वाले मंथरा, विघ्न डालने वाली पूतना, शूर्पणखा, सुबाहु, ताड़का, मारीच, रावण, कुंभकर्ण, उसका मेघनाथ और उसके सारे बेटे, ये सारे जो है ये सब कौन है, हमें संपूर्ण बनाने के लिए आए हैं। अगर रावण को हटा दो रावण में से तो राम की दो कौड़ी की भी वैल्यू नहीं है, रावण को हटा दो रामायण में से तो कौन मानेगा राम को, राम था भूल भी जाएंगे, अभी तक तो भूल गए होते लोग, राम भी कोई था और जिसने राज्य किया था, उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि रावण है। तो जो विघ्न डालने वाले हैं, धन्यवाद, उनका बहुत शुक्रिया कि हमारे जीवन में आप आए और आपके आने की वजह से बुद्धि चलने लगी, नहीं तो सारे कहे तुम बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे हो, कोई उन्नति, कोई सीखने का अवसर, कोई कहे तुमने ये जो बात कह दी ना बिल्कुल गलत है तब बुद्धि चलती है, अच्छा, और कोई कहे बहुत पावरफुल बहुत बढ़िया था फिर तो बुद्धि का चलना ही बंद, कोई कहे ये तुमने कहा ही गलत तो बुद्धि चलती है। तो जो विघ्न डालने वाले उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, मनसा सकाश, अमृत वेला माफ करना, माफी मांगना, धन्यवाद, और नए हिसाब किताब नहीं बनाना, न्यूट्रलाइज, जो हिसाब किताब बन चुके हैं उनको न्यूट्रलाइज करना, अर्थात अभी रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना, अभी तलवार नहीं निकाल लेना उनसे लड़ने के लिए, सामना मत करना उनसे कि तुमने ये क्यों कहा, तुमने वैसा क्यों कहा, मैंने ऐसा किया ही नहीं, ऐसे कैसे तुमने ये कह दिया मेरे बारे में। जिसके साथ जो भी हो रहा है वैसा ही होना चाहिए। ड्रामा न्यायकारी है। क्या ड्रामा में किसी के साथ अन्याय है? हम नहीं देख पा रहे, जन जन के आत्माओं के हिसाब चुक्त हो रहे हैं। आत्मा ने जो जो किया है सब कुछ उसे यहां मिल रहा है, और जिन जिन आत्माओं के साथ वो रही है वही आत्माएं उसके इर्द गिर्द आसपास आई है हिसाब चुक्त करने के लिए, और वो करेगी। इसके लिए दुखी नहीं होना है। सबको दूसरा प्रश्न है, मैं वर्किंग वुमन हूं, वर्किंग करते करते रात को लेट हो जाता है, अमृत वेला करती हूं, क्या सेंटर पे रोजाना जाना जरूरी है? पूरा दिन बहुत थकावट अनुभव करती हूं, काम करने में मन नहीं लगता, आशा है मुझे इन प्रश्नों का उत्तर मिलकर राहत मिलेगी। आशीष भाई क्या करें, काम में मन नहीं लगता, एक थकावट, और तीसरा अमृत वेला करती हूं पर क्या, अमृत वेला करती तो हूं और सेंटर जाना जरूरी है क्या? क्या उत्तर है? हाँ बहुत जरूरी है, और जरूरी है उसको भी बताए, और उसको राहत चाहिए। पहले तो काम में मन नहीं लगता है, यहां क्लियर कट डिप्रेशन चल रहा है, क्लिनिकल डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी चीज है, सूक्ष्म होती है, व्यक्ति डायग्नोज ही नहीं कर सकता। बाहर के विदेश के लोग फटाफट डायग्नोज करते हैं अपना डिप्रेशन, भारतीय कतराते हैं क्योंकि कलंक समझा जाता है डिप्रेशन को। कोई कहेगा कि नहीं मेरा मन नहीं लगता, मुझे उदास लगता है, रोना आता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, चुपचाप एकांत में बैठे रहो, ज्ञान भी अच्छा नहीं लगता, योग भी अच्छा नहीं लगता, योग मुक्त और ज्ञान मुक्त स्थिति है और माया युक्त स्थिति है। क्लासेस तो बिल्कुल सुनना अच्छा नहीं लगता, किसी की भी क्लासेस सुनना अच्छा नहीं लगता, बोरिंग होता है क्लासेस, वही 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 सुनाते रहते, बाप को याद करो, बाप समान बनो, विनाश सामने खड़ा है, बाप आए हैं, दिव्य गुण धारण करने हैं, सेवा बहुत करनी है, और तुम्हें घर जाना है, और लक्ष्मी नारायण बनना है, और काम महाशत्रु है, और आदि मध्यंतर दुख देता है। सुन सुन के कान सुन हो गए, दिमाग भी सुन हो गए, कान भी सुन हो गए, तो क्या उत्तर देंगे इनको? सबसे पहले तो ये जान लो, ये जो हो रहा है दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, सीक मेडिकल हेल्प जरूरत है तो, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा साइकिल है जहां पर ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, डोपामिन, सीरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, नॉरएफिनेफ्रिन कम हो जाते हैं, और ये जब कम होते हैं तो मूड लो हो जाता है, मेलनकोलिया, और जब मूड लो होता है तो और न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाते हैं, तो दिस इज अ विशियस कुचक्र है, एक साइकिल है, ये जब कम होता है तो फिर और मूड लो होता है, और मूड लो होता है तो और, तो कुछ कहीं कहीं दवाइयों की आवश्यकता है जो कि इस न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल बढ़ाए ताकि ये भी बढ़े। पहली बात तो ये। दूसरा वो कह रहे हैं कि अमृत वेला, पहले तो थकावट होती है और काम करने वाली स्त्री है, वर्किंग वुमन, वर्क में इतना अपने आप को खो ना दो कि ज्ञान योग के लिए समय ना मिले। 4 घंटा ट्रैवलिंग, 2 घंटा ट्रैवलिंग, 8 घंटा ड्यूटी, तपस्या कब होगी? अपनी ग्रीड को नीड का नाम नहीं देना है, इतना पैसा और इतना धन और इतना पद और पोजीशन की चाहना और इतनी लौकिक एम्बिशंस, ये सब है तो आध्यात्मिक जीवन नहीं जिया जा सकता है। रिलीजियस माइंड इज अ नॉन एम्बिशियस माइंड, संसार की इच्छाएं और तृष्णाएं जब तक छोड़ता नहीं व्यक्ति, तब तक अध्यात्म के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है, डूबा रहेगा इन इच्छाओं और तृष्णाओं में। ग्रीड है, लोभ है, लालच है, हबच है, और उसको वो नाम देता है आवश्यकता है। आवश्यकता है ही नहीं। बाबा क्या कहते हैं, पेट के लिए क्या चाहिए? और क्यों भाग रहे हैं इतना पागलों जैसे? अंधी दौड़, गला घोट प्रतियोगिता, ये सबसे पहले तो वर्किंग आवर्स को कम करना है। यदि ऐसा लग रहा है लॉस्ट हो रहे हैं, खो जा रहे हैं उसमें, यदि आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो अमृत वेले का टाइम अच्छा चाहिए, नींद अच्छी चाहिए, जर्निंग, चिंतन, मनन, अध्ययन, तीव्र पुरुषार्थ, सुनना, सुनाना, सेवा, ये सब के लिए टाइम चाहिए। अगर ये दिनचर्या है तो ऐसा ही चलेगा 10 साल भी, जब तक इसको रोकते नहीं ये चालू रहेगा। वैसा ही अमृत वेला नींद वाला, वही अमृत वेला नींद, क्योंकि लेट सोना और उसमें बाद पे फिर बहुत सारे आकर्षण, डिजिटल टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब बीच में आएगा और ये और समय को खींचेगा। फिर थकावट होती है, थक व्यक्ति काम से नहीं रहा है, व्यर्थ संकल्प थकाते हैं। जितना व्यक्ति बिजी रहेगा, जब तक वो आर्ट जो आज वरदान में कहा, स्वयं को बिजी रखना ज्ञान में, योग में, धारणा में, कुछ नया सीखने में, कुछ नई स्किल, कोई नया हुनर, कोई नई चीज सीखने में, वो कोई खेल हो सकता है, वो कोई आदत हो सकती है, वो कोई भाषा हो सकती है, लिखना हो सकता है, सुनना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई संगीत हो सकता है, कोई शास्त्र हो सकता है, पाक शास्त्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब तक उसमें बिजी नहीं ज्ञान योग धारणा सेवाओं में, तब तक बुद्धि भटकती रहेगी, थकान होगी, थकावट होगी, और फिर ज्ञान योग धारणा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो और दूसरी बात है, फिर सेंटर जाना जरूरी है क्या? ये प्रश्न पूछना जैसे प्रश्न नहीं है, ये तो समझ की बात है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, यहां कोई रूल और रेगुलेशन की बात नहीं है। वो मछली अगर पूछे कि क्या करूं, पानी में रहना जरूरी है क्या? मैं बाहर कभी कभी जा सकती हूं क्या? पानी, मछली का तो जीवन ही पानी है, ये प्रश्न ही मूर्खतापूर्ण है। वो तो खींच होनी चाहिए, वो तो लगाव, लगन होनी चाहिए कि उसके बिना रह ही ना सके, इतना उसमें इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट कम है, इसलिए बुद्धि यहां वहां जा रही है, यहां वहां भटक रही है संसार में। फाउंडेशन है और उसमें आप एक वातावरण में एंट्री करते हो, क्योंकि संसार का वातावरण विकारी है। इस विकारी वातावरण में सेवा केंद्र जैसे एक टापू है, एक किला है, जहां पर विकर्म नहीं होते, वहां जाना अर्थात उस वातावरण में प्रवेश करना, उस वायुमंडल में एंट्री करना और उस वातावरण में, उस वायुमंडल में, उस वाइब्रेशंस में, उस प्रकंपन में जहां पवित्रता है, जहां भगवान ने कहा है ये भगवान का तीर्थ स्थान है, वहां जाना और परमात्मा वाक्य सुनना, उसका उसमें रमन करना, इससे तो बुद्धि उन उलझनों से मुक्त होगी। इसके लिए सेवा केंद्र में जाना यह प्रश्न ही नहीं है, जाना ही है। घर में बैठकर भी लोग मोबाइल और इस पे उस पे सुनते हैं, पर वाइब्रेशंस कहां से मिलेंगे, फीलिंग कहां से आएगी फैमिली की और संसार के विकारी वातावरण में? इसके लिए बहुत जरूरी है। तो थकावट को मिटाने के लिए पहले तो मन को दुरुस्त करना है, चुस्त करना है, मन में नवीनता भरनी है, वर्किंग आवर्स को कम करना है और काम में मन नहीं लगता, जरूरत पड़ी तो मेडिकल की हेल्प लो, मूड को ठीक करने की विधि ढूंढो, कैसे मूड को ठीक किया जाए, वो सारी नई चीजें करो, वॉकिंग चालू करो, योगासन सीखो, प्राणायाम सीखो, नया कुछ सीखो, चेंज द जॉब इफ पॉसिबल। गवर्नमेंट वाला रहता है तो मुश्किल होता है, बट इफ पॉसिबल कि उस जॉब से कोई दूसरा जॉब ढूंढो। ट्रैवलिंग का जो पीरियड है उसको कैसे योग युक्त बनाया जाए उसकी चिंता करो। पुरुषार्थ की शुभ चिंता तुमको होनी चाहिए, परसों की मुरली में था पुरुषार्थ की शुभ चिंता। तो कैसे नवीनता लाए, क्या करे, उन लोगों से मिलो कि जो कुछ मार्ग बता सके, जो इस मार्ग पर ऑलरेडी इस अनुभव से गुजर चुके हैं, कुछ बुजुर्ग, कुछ अध्यात्म में परिपक्व और जिन्होंने कुछ जाना है, समझा है, कुछ पाया है, ऐसे आत्माओं से मिलो, उनसे राय लो, तो छूट पाएंगे। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, चार है, मैं और मेरा मेरी बेटी 4 साल से वेजिटेरियन है। बेटे ने भी 6 मास से नॉनवेज छोड़ा। 8 महीने हुए, अभी घर में नहीं बनाते, पहले बनाती थी, लेकिन जब सेंटर गए तो सिस्टर ने बोला कि आप बनाकर भी नहीं दे सकते, लेकिन पति नॉनवेज खाते हैं। अभी तो मैंने मना कर दिया है कि नॉनवेज नहीं बना सकती। इस पर भी बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। उन्हें ज्ञान भी सुनाया लेकिन नहीं समझते। अब क्या करना चाहिए? तो एक ब्राह्मण योगी आत्मा ने घर के किसी सदस्य के लिए नॉनवेज बना के देना है या नहीं, यह प्रश्न है। मांसाहार? हाँ नहीं तो झगड़ा हो रहा है घर में। तुम तो नॉन वेजिटेरियन बन गए, परंतु अभी वो कहता है कि मुझे नॉनवेज खाना है। वो भी एडिक्शन है, वो भी उसका भी आदत है लंबे समय से, और तुम लोग भी पहले वही खाते थे जो वो खाता था, और अचानक तुम धर्मात्मा बन गए और महात्मा बन गए और कोई पंथ पथ या कोई संस्था ज्वाइन कर ली। अब उसके मन में विद्रोह है, विरोध है। हाँ तुम बचपन से नहीं खाते होते तो वो अलग था, पर तुम भी तो हमारे साथ अब तक खाते थे, अभी तुमने चेंज कर दिया और अब चाहते हो हम भी चेंज कर दे। अब बोलो क्या करेंगे? आशीष भाई, सुरेंद्र भाई, वो कहती है कि होटल में जाके खाए ये अच्छा है, या किसी को रख लो जो उसको बना के दे। कोई आजकल तो रखते हैं ना घर में ये बनाने वाले कुक, बावर्ची, तो कोई रखे फिर उसके बाद में उसको फॉर्म बोल सकते हैं यहाँ पर कि या नहीं होगा, या फिर वो उसको खुद भी वो खुद भी तो सीखा, मतलब उसको भी तो आता होगा बनाना, वो खुद बनाए, या फिर बाहर जाए, या फिर मंगवा ले। आजकल तो सब कुछ आ जाता है ऑनलाइन, बस बाय क्लिक करो और आ जाता है घर में, तुरंत पहुंच जाता है जो चाहिए वो पहुंचता है, खाने की चीज से लेके तो सब कुछ क्योंकि तो ये शायद पहले काफी टेस्टी बनाती होंगी तो पर उसको भी डीएडिक्ट करना पड़ेगा, उसको भी थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। हम आत्माओं को हमारी धारणाओं का पता चले, ऐसा नहीं कि ये हमेशा गुप्त ही रहेगी, उनको भी पता चले ये अब है। वो सरदार जी जो होता है ऑफिस में जाते समय अपनी पगड़ी निकाल देता है कि अरे लोग क्या कहेंगे, जो नर्स होती है हॉस्पिटल की वो वही कपड़ों में देखेंगे आप मुंबई या बड़े शहरों में हॉस्पिटल कैंपस में, नर्सेस स्टूडेंट्स वो नर्सेस के ड्रेस में वो टॉप वगैरह पहन के घूम रही है, उनको लगता है लोग क्या कहेंगे। वो मिलिट्री के लोग अपना मिलिट्री का ड्रेस पहन के घूमते हैं, उनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे मिलिट्री का ड्रेस क्यों पहना है। पुलिस वाले कभी भी पहन सकते हैं वो उनके हिसाब से, तो उनको थोड़ी लगता है, उनकी अपनी धारणाएं हैं। दूसरे संस्था वाले ले लो, भक्ति की संस्था वाले, उनका अपना फिक्स ड्रेस है। तो हमारी भी ये एक धारणा है बहुत सारी धारणाओं में से, तो इस धारणा के विषय में उनको समझाना है। कल परसों ही मैं पढ़ रहा था फिल्म का एक एक्टर आमिर खान, ही इज अ वीगन, जो पहले नॉनवेज खाता था, उसकी पत्नी से वो इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि उसके कारण उसने भी नॉनवेज सब छोड़ दिया। प्रभाव तो पड़ेगा धीरे धीरे। दूसरी बात, वेजिटेरियन डाइट का क्या मूल्य है वो समझाओ। हाँ मैं बता रहा हूं, वो तो दूसरी बात है, वीगन इज डिफरेंट, यहां वेजिटेरियन की बात चल रही है। तो वेजिटेरियन का क्या महत्व है, फिर नॉनवेज से क्या क्या नुकसान है, फिर नॉनवेज खाने से क्या क्या होता है, उसके मेडिकल एस्पेक्ट्स क्या है, रीड पढ़ो, क्योंकि वो जो व्यक्ति होगा वो तार्किक है, लॉजिशियन है, उसको उसके माइंड अगर कन्विंस हो गया तो वो छोड़ देगा। और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, कैसे उसमें पोल्यूशन पोल्यूटेड होता है, कंटेमिनेटेड होता है वो मीट वो मटन, क्या क्या चीजें होती है उसमें, फिर उसके रिलीजियस एस्पेक्ट्स, नो फ्लॉक दैट रेंज दिस वैली टू स्लॉटर आई कंडेम, टॉट बाय द पावर दैट पिटीज मी आई लर्न टू पिटी देम। एक अंग्रेजी कवि लिखता है कि मेरा कोई एतराज नहीं है कि जो ये भेड़ बकरियां गाय ये जा रही है उनको काटू और खाऊं, मैं खा सकता हूं इनको काट कर। नो फ्लॉक दैट रेंज दिस वैली इस खाई में, इस वादियों में जो ये शिप और ये घूम रहे हैं उनको काट कर मैं खा सकता हूं, बट टॉट बाय द पावर दैट पिटीज मी, पर मेरे ऊपर एक शक्ति है जो मुझ पर दया करती है, दैट एंड आई लर्न टू पिटी देम, करुणा उनके प्रति, अहिंसा उनके प्रति, और उसमें वायलेंस समाया हुआ है, और जहां वायलेंस है वहां पर मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है, वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म वायलेंस है, काटना मारना, उसके वीडियोस है बहुत सारे, क्या कैसे वो देखा है वो गाड़ी जिसमें मुर्गियां और जाली होती है और उसमें पकड़ के ले जाते हैं, उनके चेहरे के हाव भाव जिनको अभी काटा जाने वाला है, वो बकरा वो बकरी जिनको काटने वाले कैसे चिल्लाते हैं, वो सारा पेन वो सारा दर्द उसमें समाया जाता है, और वो मीट भी होता है वो कोई फ्रेश नहीं होता है, उसमें क्या क्या करते हैं केमिकल प्रोसेसेस और कितना देर रखते हैं, हाँ, सो बहुत सारी चीजें, सो एक्सप्लेन हिम एवरीथिंग एंड ग्रेजुअली सारी सारी मल्टी प्रोंग अप्रोच, ये भी बताओ वो भी बताओ ये भी बताओ वो भी बताओ सारे एस्पेक्ट्स, और उसको मुक्त करो। लास्ट प्रश्न है, मैं ज्ञान में 4 साल से हूं, अपने पति व 2 बच्चों के साथ यूएस में रहती हूँ। मेरा प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य को कैसे पालन करें, पति साथ नहीं देते, वो नहीं समझते, उन्होंने कोर्स किया है लेकिन जब उन्होंने सुना कि यह सब छोड़ना पड़ेगा तो बोले यह सही नहीं है, यह तो पति पत्नी का रिलेशन है तो हम इसको फॉलो करें, इसके कारण कई बार हमारी फाइट हुई है, इसका समाधान बताइए क्या करे फाइट क्या करे फाइट का, ये तो बहुत बड़ा मतलब कॉमन सवाल है जो कि यज्ञ में जो लोग भी ज्ञान में आते हैं, और पहली बात तो ब्रह्मा बाबा के पास जब भी खबर आती थी कि बाबा ये माता ज्ञान में आई तो बाबा पहला प्रश्न पूछते थे, उसके घर में झगड़ा हुआ नहीं हुआ, मतलब कच्ची है, मतलब अभी कच्ची है ज्ञान में आ गई मतलब थोड़ा हलचल हंगामा होना चाहिए, ये डिसाइड करता है कि माता में अभी धारणाएं करनी चालू की है, अगर कुछ भी नहीं सब शांति से ठीक ठीक चल रहा है तो कैसे कहेंगे। अब इधर हमारे हॉस्पिटल में एक अभी डॉक्टर आने वाले थे कुमार, तो हम बड़े खुश थे कि अभी वो ज्वाइन करेंगे, कुमार थे और अभी हॉस्पिटल ज्वाइन करने वाले थे, अभी अभी न्यूज आई कि नहीं अभी नहीं ज्वाइन करूंगा, अभी मेरी शादी है बाद में आता हूं अभी थोड़ा बिजी हूं तो हमने कहा ये तो कुमार था ना तो सबसे पहली बात, महात्मा गांधी ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है यंग इंडिया में ब्रह्मचर्य के विषय में और अपने पत्नी के विषय में भी लिखा है कस्तूरबा के विषय में, प्रश्न पूछा था कि दोनों में से एक ब्रह्मचर्य का पालन करे तो ये जो दूसरा है जो पालन कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, क्या उसको इसके लिए वेट करना चाहिए कि ये कन्विंस हो जाए दूसरी और फिर दोनों मिलके पालन करें अच्छे से, या ये चालू कर दे करना। उन्होंने कहा है कि वन शुड नॉट वेट फॉर द अदर पार्टनर, वॉक अलोन, गो अहेड, वो जो दूसरा है ना धीरे धीरे ज्वाइन करेगा, ही विल ज्वाइन द मार्च स्लोली, इसके लिए वेट नहीं करना होता है, क्योंकि इसके लिए वेट करना अर्थात कभी भी नीचे जा सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं गड्ढे में, इसके लिए वेट नहीं करना होता है ब्रह्मचर्य के मार्ग में, पवित्रता के मार्ग में, जब समझ में आा गया कि इस जीवन का परम लक्ष्य परम पवित्रता है और बिना पवित्रता के कुछ भी नहीं होता है, यहां पर ना ज्ञान धारण होगा ना कुछ सेवा होगी ना ज्ञान होगा ना योग होगा, कुछ भी नहीं, जीरो, जहां पवित्रता और ब्रह्मचर्य बार बार खंडन हो रहा है वहां पर ये ज्ञान योग का जीवन जीरो है, पाखंड है, दंभ है, हिपोक्रेसी, सेल्फ डिसेप्शन। तो जब ऐसी बात है तब हम किसी के लिए थोड़ी रुकेंगे कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करे फिर मैं करना चालू करूं, फिर क्या किया जाए, रोज झगड़ा, नो रिएक्शन, नो रिस्पॉन्स, पोस्टपोन करो, टालते रहो, उसको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि अभी कन्विंस हो ही ना, ये भी हो सकता है। अपना मार्ग हर एक ने खुद चुनना है यहां पर। हाँ, वो भोजन में वाइब्रेशंस दो, उस आत्मा को सुबह इमर्ज करो, उससे बात करो, वो सारी चीजें तो है। आत्मा को इमर्ज करो, उससे बात करो, तुम देवकुल की महान आत्मा हो, तुम संपूर्ण पवित्र आत्मा हो। ऐसे बहुत सारे युगल है, यहां पर भी बीच में आए थे युगल, कि जिनकी युगल जो है वो ज्ञान में नहीं चलती, वो डॉक्टर साहब ज्ञान में है, पर वो युगल जो ज्ञान में नहीं है उसको पवित्रता बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा 15 साल पहले जो हुआ वो हुआ, अभी 15 साल से देह का कोई स्पर्श नहीं, संपूर्ण ब्रह्मचर्य की धारणा। और वो युगल जो है उनकी, वो ज्ञान में नहीं है पर चरित्रवान है, बहुत प्यूरिटी से प्यार है उसको। तो ऐसे भी लोग संसार में है। तो आत्माओं को, और आत्मा तो प्योर है ही अंदर से, खाली वो प्यूरिटी जागृत करनी है। तो ऐसी आत्माओं को इमर्ज करना, उन्हें सकाश देना, उनमें शक्ति भरना, अंदर से तो वो भी जानती है, परंतु संस्कार 63 जन्म के विकार के और भोग के है, विष भरे भोग में आत्मा डूबी रही है। ऐसे थोड़ी ना एक क्षण में वहां से निकल के आ जाएगी बाहर, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, हार्मोनल, मेडिकल एस्पेक्ट्स है, बहुत सारी चीजें हैं। और बाहर का प्रभाव है, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया, मूवीज, नॉवेल्स, मैगजीन्स, मित्र, संग, साथी, बाहर का वातावरण, ये सब होते हुए, और संसार की रीति रस्म, रिवाज, परंपराएं, रूढ़िवादिता, ये सारी चीजें हैं, वो सारा समर्थन करती है विकार का। वो कहते होना ही चाहिए। तो जब ये ऐसी बातें हैं, तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि सडनली उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, सी चेंज आ जाए और वो एकदम पवित्रता को स्वीकार कर ले, नहीं करेगा, धीरे धीरे होगा। इसमें स्वयं की धारणाएं मजबूत रखनी है, इसमें उस आत्मा को रोज सकाश देनी है, इसमें भोजन पर बहुत सारे प्रयोग करने हैं, इसमें उसे भी किसी थर्ड पर्सन के द्वारा अगर कन्विंस कर सके, उसको भी मधुबन में अगर ला जा सके, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी शिविर में वो आए, यहाँ के वातावरण को देखे, यहाँ के लोगों को देखे, इतने सारे हजारों लोग कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे, व्हाट प्यूरिटी, व्हाट वाइब्रेशंस यहाँ पर है, उसको भी अनुभव हो। अनुभव उसको हो जाए तो स्वतः ही सारी धारणाएं हो जाएगी, क्योंकि प्यासी हर आत्मा है अंदर से, प्यास तो है पर उसे पता नहीं है। इसलिए पर ये सब करने के बावजूद भी यदि नहीं हो रहा है तो फिर हर एक ने अपना मार्ग चुनना पड़ेगा, क्योंकि इस मार्ग पर यदि चलना है सब चीजों का कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है एक्सेप्ट वन, प्यूरिटी। उसमें कोई क्या कहेंगे, रियायत, नो अदर एक्सक्यूज, नो लेम एक्सक्यूजेस, कोई भी बहाने, कारण, प्रिटेक्स्ट नहीं चलेगा उसमें, क्योंकि वो सर्वप्रथम धारणा है, वो प्रथम पुरुषार्थ है, वो स्वधर्म है, वो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट मर्यादा है, फर्स्ट नियम है, फाउंडेशन है यज्ञ का। वही यदि कोई छीन रहा है तो फिर, और दूसरा, पुरुष का स्वभाव होता है कि स्त्री समर्पण करे, वो नहीं चाहता है कि वो मेरे बराबर की हो, पुरुष के स्वभाव को भी समझना है। द्वापर से अब तक उसका स्वभाव है कि सामने वाला समर्पण करते मेरे आगे, क्योंकि तभी उसके अहंकार की तृप्ति होती है। तो यहां तो अहंकार के विरोध में खड़े हो रहे हैं, इसके लिए विद्रोह है मन में, विरोध है उसके मन में, और ज्यादा विरोध होगा। इसके लिए यहां बहुत टेलर्ड करना पड़ेगा अपने अप्रोच को, कि जैसी परिस्थिति है, जैसे दोनों के पहले संबंध थे, हो सकता है कि अभी तक दोनों ज्ञान में चल रहे थे, दोनों का आपस में बहुत प्यार है, और सडनली एक जाकर ब्रह्मा कुमारी में चला गया तो दूसरा की तरफ ध्यान कम हो गया है, क्योंकि हम कह रहे ये विकार है हम नहीं जाएंगे, परंतु केवल विकार की बात नहीं है, यह भी हो सकता है कि उससे जितना प्यार था वो प्यार भी तो कम हो गया, उसको जो केयर पहले मिलती थी अब नहीं मिल रही है, उसकी तरफ जितना अटेंशन था अब नहीं मिल रहा है, इसलिए वो भूखी हो गई है आत्मा प्यार के लिए। उसको शायद विकार नहीं चाहिए परंतु प्रेम तो चाहिए, तो प्रेम से वंचित कर दिया उस आत्मा को, यह भी हो सकता है, उसको प्रेम दो, यह भी एक सूक्ष्म कारण हो सकता है। इसके लिए तो विद्रोह किया उसने, उसके लिए पहले बहुत सब कुछ करते थे, अभी कुछ करना बंद कर दिया, क्योंकि हमको नशा है एक, हमको भगवान मिल गया और हम अब ये और हम अब वो, हाथ में अब हमारे तलवार है, जो बीच में आएंगे उसको मार देंगे, काट देंगे, हटा देंगे, तो वो बेचारा क्या करेगा इसके लिए दुखी है। हाँ ये पावरफुल है करके विरोध तो कर रहा है, कुछ कुछ ऐसे है जो बिल्कुल कमजोर है, वो बेचारे कुछ नहीं करते और डिप्रेशन में चले जाते हैं पति या फिर पत्नी भी, जो ज्ञान में नहीं है और जो कहती है हमको बच्चा चाहिए। एक भाई आए थे जो कि ज्ञान में है, उनकी एक छोटी बेबी है और अभी पत्नी कहती है कि मुझे बेटा चाहिए और उसकी माँ भी कहती है कि मुझे पोता चाहिए और बाहर का नहीं चाहिए, अपना चाहिए, अपना खून, आवर ब्लड, ओन ब्लड। तो ऐसे तो बहुत सारी है। वो एक पत्नी थी ना, पति को 7 बजे बाथरूम में बंद कर देती थी 1 घंटा मुरली के टाइम 7 से 8। तो दोनों तरफ से है, क्योंकि अहंकार को चोट की है, उसका जो अहंकार है, पुरुष का अहंकार बड़ा होता है, वो तो समर्पण मांगता है, उसको चोट कर दी, तो शायद प्रेम से डिप्राइव किया है, तो थोड़ा प्रेम भी दे दो, केयर, अटेंशन। हाँ ये चीज में पक्का रहना है पवित्रता, पर बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, ये तो पूरी करो और करनी चाहिए, क्योंकि उसमें है अब वो बंधन बन चुका है ऑलरेडी, अब उसको निभाना भी है और उस बंधन को मीठा संबंध बनाना है, ताकि उसके कारण वो ज्ञान में आए। ऐसे नहीं कि हम भी उतने ही एग्रेसिव रहे और लड़ाई झगड़ाई करते रहे छोटी छोटी बातों में। यहां सेल्फ चेकिंग की बात है, खुद की चेकिंग करने की। तो प्रश्न तो ये ऐसा है कि इसका उत्तर जो व्यक्ति के साथ है वो सामने बैठे तो डिस्कस करे तो ही उसको कुछ हो सकता है, और अल्टीमेटली इसका उत्तर फाइनली तो बाबा से आएगा। उसका इस आत्मा का बाबा से कितना कनेक्शन है, इसका ऊपर से तो कह रही है कि ऐसा है, परंतु खुद भी अगर आकर्षण में है विकार के तो फिर क्या। 3-4 प्रकार है इसमें कपल के। एक तो वो कि स्त्री ज्ञान, पत्नी ज्ञान में है, पति ज्ञान में नहीं है, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी, पति ज्ञान में, पत्नी ज्ञान में नहीं, पत्नी ज्ञान में, पति ज्ञान में, ये दो हो गया। तीसरा है दोनों ही ज्ञान में नहीं, दोनों ही ज्ञान में नहीं, परंतु अभी धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है, संपर्क में आए हैं, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, पर एक को ज्यादा समझ में आ रहा है, एक को कम समझ में आ रहा है, और एक तीसरी चौथा है कि जिसमें दोनों को समझ में आ गया, दोनों को समझ में आ गया, दोनों ज्ञान में, फिर भी विकार का आकर्षण है। यह सबसे खतरनाक कैटेगरी है, क्योंकि दोनों को ही पता है पर फिर भी विकार का आकर्षण जबरदस्त है। ये पहला तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है, ये भी, पर ये वाला जो है ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि दोनों ही पूर्ण ज्ञानी है, मतलब पूर्ण ज्ञानी कहने के लिए, पर फिर भी अज्ञानी फिर भी आकर्षण है, क्योंकि आदत, क्योंकि एडिक्शन, उत्तेजना। तो ये मार्ग पवित्रता का बहुत बड़ा है, डिस्टर्बेंस भी होगी, होती है इससे, पर वही ध्यान रखना है इस व्यक्ति को कि डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए बहुत सूक्ष्म रीति से, आहिस्ता, नम्रता से इसको हैंडल करना पड़ेगा सिचुएशन को, कहां एग्रेसिव होना है, कहां एकदम अग्नि रूप और अभी काली रूप धारण करना है, कहां शीतल धारण बनने। वो तो देखो हर एक की जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से ही इसका उत्तर दिया जा सकता है। कई बार ऐसा है कि घर वाले बिल्कुल विरोध करते हैं कि बिल्कुल जाना नहीं सेंटर में, और नहीं तो नाराज होते, बिगड़ते, झगड़ा करते। उस सिचुएशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सेंटर जाए ही, घर पर ही मुरली है, मोबाइल में आता है, वही पढ़े और उसी का चिंतन करे, अध्ययन करे, मनन करे। जैसे बांदेलिया होती है, गोपिया होती है, उनका आकर्षण और ज्यादा होता है। तो ये सब तो करना है, इसमें आप झगड़ा नहीं कर सकते हर बात पे। इसमें भी थोड़ा थोड़ा जब ज्ञान, व्यक्ति ज्ञान में आता है ना, अहंकारी बन जाता है थोड़ा सा। मैं ज्ञानी, तुम अज्ञानी, तुमको क्या समझता है, हम ज्यादा पवित्र, तुम कम पवित्र, होलियर देन थाउ, थाउ एट, हां तुम बगुले अमांस तुम भी ज्ञान में आओगे, तुम भी हमारे चरणों में झुकोगे। ऐसा अहंकार भयंकर आ जाता है कि हम दिव्य गुण है, तुम में बिल्कुल दिव्य गुण नहीं है, हम स्वर्ग तुम नर्क तुम अज्ञानी, तुमको कुछ नहीं समझता, तुमको समझ ही नहीं है कुछ, तुम्हें सृष्टि आदि मध्य अंत का कोई ज्ञान नहीं, तुम देह समझते हो अपने आप को, तुम विकार में हो, हम निर्विकारी बन रहे। पवित्रता का भी जबरदस्त अहंकार आ जाता है, ब्रह्मचर्य का अहंकार, हम ब्रह्मचारी, हाथ मत लगाना बिल्कुल, बस मैं कर दूंगी तो उसका भी अहंकार तो किसी भी बात का आ सकता है। तो ये अहंकार के सामने व्यक्ति थोड़ी झुकेगा, सामने वाला व्यक्ति तो, यहां हमने ज्ञान रख दिया बाजू में और अपने अहंकार का ही पोषण कर रहे हैं इसकी आर्ट में। ब्रह्मा कुमारी इसको पकड़ के उसके पीछे अपने अहंकार की पालना हो रही है। ओम शांति।